नमस्कार, संयुक्त राष्ट्र समाचार के साथ मैं सचिन गौड़। 12 मार्च 2021 के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में सुनिए, वैश्विक महामारी कोविड-19 का एक साल, यूएन महासचिव का संदेश, टीकाकरण की शुरुआत से नजर आई अंधेरी सुरंग के दूसरे छोर पर रोशनी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला सशक्तिकरण और प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने और लैंगिक हिंसा व भेदभाव पर विराम लगाने की पुकार, म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के विरोध में प्रदर्शन जारी, सुरक्षा परिषद ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा की निंदा की, और सुनिएगा एक विशेष बातचीत केंद्रीय टेक्सटाइल्स मंत्री और महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी से। आपको याद दिलाते चलें कि खबरों को विस्तार से पढ़ने और खास रिपोर्टों और इंटरव्यूज को सुनने और देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। पता है news.un.org/hi। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा है कि कोरोना वायरस संकट ने पूरी दुनिया को दुख और पीड़ा की सुनामी की चपेट में ले लिया था, लेकिन टीकाकरण की शुरुआत होने से एक अंधेरी सुरंग के दूसरे छोर पर रोशनी दिखाई देने लगी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च 2020 को कोविड-19 को वैश्विक महामारी के रूप में परिभाषित किया था। महासचिव ने इसका एक वर्ष पूरा होने पर एक संदेश जारी कर कहा, इतनी सारी जिंदगियां खत्म हो गई हैं, अर्थव्यवस्थाएं उलट पुलट हुई हैं और समाज करहा रहे हैं। सबसे निर्बल लोगों ने सबसे अधिक पीड़ा झेली है। जो पीछे छूट गए थे उन्हें और पीछे छोड़ा जा रहा है। कोरोना वायरस के दुनिया भर में अब तक 11 करोड़ 80 लाख संक्रमणों की पुष्टि हो चुकी है और 26 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। महासचिव गुटेरेश ने चुनौतीपूर्ण हालात के मद्देनजर जरूरतों के अनुरूप खुद को ढालने और नए तरीकों से जीवन जीने के लिए दुनिया भर में लोगों की सराहना की है। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान करते हुए ध्यान दिलाया कि उनके और अन्य अहम सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों के समर्पण व बलिदान के फलस्वरूप ही समाजों में जीवन जारी रह सका। उन्होंने कोवैक्स पहल के तहत निम्न आय वाले देशों में ऐतिहासिक टीकाकरण की शुरुआत की प्रशंसा की है, लेकिन वैक्सीन राष्ट्रवाद के उभरने, देशों द्वारा टीकों की होड़ में शामिल होने और वैक्सीन निर्माता कंपनियों के साथ गुपचुप समझौते किए जाने पर भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को फिर से शुरू करना और समाजों की तालाबंदी से वायरस की तालाबंदी की ओर बढ़ना अहम है। इसके मद्देनजर वैक्सीन उत्पादन की मौजूदा क्षमता को कम से कम 2 गुना करने पर जोर दिया गया है। इस बीच कोरोना वायरस वैक्सीन की न्यायसंगत और समानतापूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में गुरुवार को एक नया वैश्विक अभियान शुरू किया गया। इसका नाम है ओनली टुगेदर, यानी केवल एकजुटता के साथ। इस पहल के तहत सभी देशों में सभी लोगों को वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक एकजुटता की जरूरत को रेखांकित किया गया है। महिला सुरक्षा और अधिकारों के लिए काम करने वाली यूएन संस्था यूएन विमेन की प्रमुख पमजिले मलाम्बो नगुका ने कहा है कि महिलाओं की जिंदगी पर असर डालने वाले निर्णयों से उन्हें दूर रखा जाना गलत है और इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 से निपटने के प्रयासों में अग्रिम मोर्चे पर मुस्तैद महिला चिकित्सकों और वैज्ञानिकों ने लैंगिक चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस ने तो भेदभाव नहीं किया, लेकिन समाजों ने जरूर किया है। एक रिपोर्ट के साथ यूएन न्यूज हिंदी के प्रमुख महबूब खान।
सोमवार 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य कोविड-19 संकट के बाद न्यायोचित पुनर्बहाली और समानतापूर्ण भविष्य के निर्माण में महिलाओं व लड़कियों के प्रयासों को रेखांकित करना और उनकी भूमिका पर चर्चा करना था। यूएन विमेन की कार्यकारी निदेशक फुमजिले मलाम्बो न्गुका ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हम उस महामारी से उबरने पर सोच विचार करते हुए एक चौराहे पर खड़े हैं जिसका महिलाओं व लड़कियों पर विषमतापूर्ण असर हुआ है। इसलिए वर्ष 2021 में इस पड़ाव पर जब हम चौराहे पर हैं, हमें इस विषमता का अंत करना है। महिलाओं पर कोविड-19 महामारी का सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव हुआ है। यूएन की वरिष्ठ अधिकारी ने इस पृष्ठभूमि में आगाह किया कि कोविड-19 से पुनर्बहाली के प्रयासों की अगुवाई के लिए महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है। उन्होंने याद दिलाया कि जब तक महिलाओं के जीवन पर असर डालने वाले फैसलों में उनकी भागीदारी नहीं होगी, तब तक पुनर्निर्माण प्रक्रिया पर्याप्त और समावेशी नहीं होगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा है कि कोविड 19 संकट से अपने देशों व समुदायों को उबारने में महिलाएं आगे बढ़कर योगदान कर रही हैं। जिन देशों में सरकारों का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं, वहां बेहद कम संख्या में मौतें हुई हैं और वे पुनर्बहाली के रास्ते पर हैं। अग्रिम मोर्चे पर डटे स्वास्थ्य व देखभाल कर्मियों में 70% महिलाएं हैं। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी ने पिछले महीने समानतापूर्ण स्वास्थ्य के लिए जेंडर इक्वल हेल्थ नामक पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र में शीर्ष पदों पर महिलाओं की संख्या बढ़ाना, समान वेतन को बढ़ावा देना और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सुरक्षित एवं शिष्ट माहौल सुनिश्चित करना है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन और उसके साझेदार संगठनों का एक नया अध्ययन दर्शाता है कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा युवा उम्र से ही शुरू हो जाती है और समाज में बुरी तरह वे गहराई से जड़े समाये हुए हैं। इस रिपोर्ट को महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर अब तक का सबसे विस्तृत अध्ययन बताया गया है, जिसके अनुसार अपने जीवन काल में हर 3 में से 1 महिला यानी 73 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को शारीरिक या यौन हिंसा का सामना करना पड़ता है। ज्यादा जानकारी के साथ प्रतिष्ठा जैन।
रिपोर्ट के अनुसार हिंसा की शुरुआत कम उम्र में ही हो जाती है। 15 से 24 वर्ष आयु वर्ग में हर 4 में से 1 महिला को अपने अतरंग साथी के हाथों हिंसा का अनुभव करना पड़ा है। अतरंग साथी द्वारा हिंसा महिलाओं के खिलाफ हिंसा का सबसे अधिक व्याप्त रूप बताया गया है, जिससे 64 करोड़ से ज्यादा महिलाएं प्रभावित हैं। दुनिया में 6% महिलाओं ने बताया कि उनके पति या साथी की बजाय उन्हें अन्य लोगों से यौन हमले का अनुभव करना पड़ा। यौन दुर्व्यवहार के सभी मामलों के दर्ज ना हो पाने और कथित कलंक की वजह से वास्तविक संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। इस रिपोर्ट को महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मुद्दे पर अब तक का सबसे बड़ा अध्ययन करार दिया गया है, जो कि वर्ष 2000 से 2018 तक एकत्र किए गए आंकड़ों पर आधारित है। लेकिन मौजूदा हालात पर कोविड-19 महामारी के असर का आकलन नहीं हो पाया है। यूएन एजेंसी और अन्य साझेदारी संगठनों ने सचेत किया है कि महामारी के दौर में तालाबंदी होने व समर्थन सेवाओं में व्यवधान आने से महिलाओं के खिलाफ हिंसा होने की संभावना बढ़ी है। विशेषज्ञों का कहना है कि हिंसा के सभी रूपों का महिलाओं के स्वास्थ्य व कल्याण पर बुरा असर हो सकता है, जिसके दुष्प्रभाव लंबे समय तक जारी रह सकते हैं।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने म्यांमार में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध हिंसा की कठोर शब्दों में निंदा की है। फरवरी महीने में सेना द्वारा सत्ता पर कब्जा जमाने के बाद से ही म्यांमार में व्यापक स्तर पर देश के अनेक शहरों में विरोध प्रदर्शन जारी हैं। महिला अधिकारों की संरक्षा के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र संस्था यूएन विमेन ने भी शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की दमनात्मक कार्रवाई में महिलाओं को निशाना बनाए जाने पर गंभीर चिंताएं व्यक्त की हैं। एक रिपोर्ट के साथ यूएन न्यूज हिंदी के प्रमुख महबूब खान।
यूएन विमेन ने शुक्रवार को जारी एक वक्तव्य में कहा कि हिरासत में रखी गई महिलाओं के साथ यौन हिंसा व शोषण भी होने की खबरें मिली हैं। यूएन विमेन की कार्यकारी निदेशक फुमजिले म्लाम्बो नगुका ने कहा कि महिलाओं ने म्यांमार के इतिहास में अग्रणी और सुसज्जित भूमिका निभाई है और वर्तमान में भी ऐसा कर रही हैं। अपने विचारों की शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए महिलाओं पर हमले न किए जाएं और न ही उन्हें दंडित किया जाए। यूएन विमेन के अनुसार इन प्रदर्शनों के दौरान कम से कम 6 महिलाओं की मौत हुई है और लगभग 600 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। ऐसी चिंताएं भी व्यक्त की गई हैं कि मौजूदा संकट के कारण बुनियादी सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, जिनमें सुरक्षित गर्भावस्था सुनिश्चित करने और मातृत्व संबंधी सेवाएं शामिल हैं। ऐसा हुआ तो गंभीर, यहां तक कि जीवन को जोखिम में डालने वाले नतीजे भी देखने को मिल सकते हैं। यूएन विमेन संगठन की कार्यकारी निदेशक म्लाम्बो नगुका ने कहा कि म्यांमार ने महिलाओं के विरुद्ध सभी तरह के भेदभाव के उन्मूलन के लिए कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि महिलाओं के विरुद्ध इस तरह की हिंसा का प्रयोग किया जाना उसी तरह के भेदभाव का एक रूप है, जिसे इस कन्वेंशन में प्रतिबंधित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी म्यांमार में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध हिंसा की कठोर शब्दों में निंदा की है और चिकित्सा कर्मियों, नागरिक समाज, श्रम संगठनों व पत्रकारों पर लगाई गई पाबंदियों पर गहरी चिंता जताई है। मार्च महीने के लिए 15 सदस्यों वाली सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाल रहे अमेरिका ने बुधवार को एक अध्यक्षीय वक्तव्य जारी किया जिसमें म्यांमार में मनमाने ढंग से हिरासत में लिए गए सभी लोगों को रिहा करने की अपील दोहराई गई। वक्तव्य में कहा गया है कि सुरक्षा परिषद म्यांमार के लोकतंत्र की दिशा में कदम बढ़ाने का समर्थन करती है और लोकतांत्रिक संस्थाओं व प्रक्रियाओं को बरकरार रखने, हिंसा से परहेज बरते जाने, मानवाधिकारों व बुनियादी स्वतंत्रताओं का पूर्ण सम्मान करने और कानून के राज को सर्वोपरि रखने की अहमियत रेखांकित करती है।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने सीरिया में गृह युद्ध के राजनीतिक हल की तलाश के लिए यूएन के दृढ़ संकल्प को रेखांकित किया है। सीरिया में गृह युद्ध के 10 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने बुधवार को यूएन के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पत्रकारों को संबोधित किया। महासचिव गुटेरेश ने जोर देकर कहा कि देशों को आपसी मतभेद दरकिनार कर इस संकट का समाधान ढूंढने में सीरियाई नागरिकों को समर्थन देना होगा।
After a decade of conflict, in the middle of a global pandemic, and faced with a steady stream of new crises, Syria has fallen off the front page. Syria, एक दशक के हिंसक संघर्ष
के बाद, वैश्विक महामारी के दौरान और नए संकटों की लहर के समक्ष मुख्य पन्नों से दूर हो गया है। और फिर भी देश में हालात एक जीवित दुस्वप्न बने हुए हैं। यूएन प्रमुख के अनुसार दुनिया ने सीरिया को विध्वंस के रास्ते पर जाते हुए और एक ऐसे रक्तपात में घिरते हुए देखा है जिससे कोई परिवार अछूता नहीं है। लाखों सीरियाई लोगों की मौत हुई है, लाखों विस्थापित हुए हैं और असंख्य अन्य लोग या तो हिरासत में हैं, लापता हैं या फिर अनिश्चितता में जीवन गुजार रहे हैं। देश की 60% आबादी इस वर्ष भुखमरी के नज़दीक पहुंचने के जोखिम का सामना कर रही है, इसलिए मानवीय राहत सामग्री हर ज़रूरतमंद तक पहुँचाने के लिए रास्ते खुले रखने पर जोर दिया गया है। इस क्रम में यूएन प्रमुख ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से सहमति पर पहुंचने का आग्रह किया है। संयुक्त राष्ट्र के विश्व पर्यटन संगठन की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना वायरस के नए नए रूप उभरने और फैलने के कारण चिंताएं उपज रही हैं। इस वजह से 217 वैश्विक पर्यटन स्थलों में से लगभग एक तिहाई अंतर्राष्ट्रीय सैलानियों के लिए अब भी बंद हैं, जबकि कुछ देशों में सरकारों ने प्रतिबंधों में कुछ ढील देने वाले उपाय किए हैं। पूरी जानकारी के साथ अंशु शर्मा।
विश्व पर्यटन संगठन की यात्रा प्रतिबंध रिपोर्ट में कहा गया है कि ज्यादा प्रभाव एशिया, प्रशांत और यूरोप के पर्यटक स्थलों पर पड़ा है। सिक्के का दूसरा पक्ष देखें तो लगभग एक तिहाई वैश्विक पर्यटन स्थल अब अंतर्राष्ट्रीय सैलानियों के लिए खुल गए हैं। अल्बानिया, कोस्टारिका, डोमिनिकन गणराज्य, उत्तर मैसिडोनिया और तंजानिया में कोविड-19 से संबंधित तमाम प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। यूएन एजेंसी ने रिपोर्ट के बारे में जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थलों पर कोरोना वायरस संबंधी यात्रा प्रतिबंधों के बारे में फैसला करने में तार्किकता, प्रमाण और जोखिम विश्लेषण पर आधारित नजरिया बढ़ रहा है। बहुत से देशों ने पर्यटकों को अपने यहाँ दाखिल होने की अनुमति देने के लिए कोविड-19 का नकारात्मक परीक्षण परिणाम दिखाना अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा पर्यटकों के पते ठिकाने के बारे में ताज़ा जानकारी रखने के लिए उनकी संपर्क जानकारियां देना भी ज़रूरी बना दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र के विश्व पर्यटन संगठन के अनुसार बहुत से देशों की सरकारों ने अपने नागरिकों को परामर्श दिया है कि वो गैर ज़रूरी विदेश यात्रा ना करें।
संयुक्त राष्ट्र में संसदों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर संसदीय संघ यानी IPU की ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया भर की संसदों में महिला सांसदों की भागीदारी 25% से अधिक पहुंच गई है। ये आंकड़ा ऐतिहासिक है, लेकिन संसदों में लैंगिक समानता हासिल करने का लक्ष्य अभी दूर है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारत की केंद्रीय टेक्सटाइल्स मंत्री और महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने यूएन न्यूज को बताया कि उन्हें इस बात का गर्व है कि भारत की संसद में देश के इतिहास में सबसे ज्यादा महिला प्रतिनिधि हैं, लेकिन आसमान छूना अभी बाकी है। सुनिए अंशु शर्मा के साथ उनकी ये विशेष बातचीत।
स्मृति जी, आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं, संसद में इतने समय से हैं, 20 साल से राजनीति में हैं, देश की संसद में, विधानसभाओं में और कुल मिलाकर जो राजनीति है उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी की क्या स्थिति है? क्या यह संतोषजनक है?
क्या महिला कभी भी संतोष कर सकती है जब तक पूरा आसमान उसका ना हो जाए? आज ये कहते हुए मुझे इस बात का गर्व है कि भारत की संसद में देश के इतिहास में सबसे ज्यादा महिला प्रतिनिधि है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आसमान छूना भी बाकी है। हमारे देश में 1.3 मिलियन महिलाएं पंचायत स्तर पर अपनी राजनीतिक भूमिका निभा रही हैं, अपनी ओर से सेवा दे रही हैं। उन महिलाओं का उल्लेख करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि संसद में महिला का।
क्या लगता है महिलाओं के राजनीति में आना और फिर उच्च पद तक पहुंचने के रास्ते पुरुषों के मुकाबले ज्यादा कठिन है?
कठिनाइयां और चुनौती तो महिला के जीवन का एक अभिन्न अंग है, लेकिन अगर आज हम राजनीतिक सशक्तिकरण की बात करें तो हाँ, एक तरफ हम महिलाओं की संख्या संसद में ज्यादा बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन दूसरी ओर वो महिलाएं जो एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में भी अपनी भूमिका निभा रही हैं, उनकी भी संख्या बढ़ती जा रही है। हमारी देश की वित्त मंत्री महिला है। 15वें वित्तीय कमीशन के अंतर्गत पहली बार हमारे देश में जो डेवल्यूशन ऑफ फंड्स होगा वो महिला केंद्रित भी होगा, ये आज तक भारत के इतिहास में नहीं हुआ।
आपने एक एक्टर के रूप में अपना सफर शुरू किया था जिसमें आपने सफलता का उच्चतम मुकाम हासिल किया, यहाँ से राजनीति में कैसे आई और किस तरह इस मुकाम तक पहुंची, अपनी कहानी हमारे साथ साझा करें।
आप राजनीति में किसी एक सेगमेंट में उत्तीर्ण होकर जब आते हैं तो आपको अपने राजनीतिक सहयोग, अपने राजनीतिक योगदान और अपने राजनीतिक सफर के लिए एक विशेष प्रकार का सम्मान होता है।
हाल ही में जो सोशल मीडिया का उदय हुआ है उससे क्या आपको लगता है कि महिलाओं के लिए स्थिति और मुश्किल होती जा रही है?
मुझे लगता है कि सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा एनेबलर बना है महिला के दृष्टिकोण से। आज अगर हम परिचर्चाओं की दृष्टि से देखें तो सोशल मीडिया में भिन्न प्रकार के आवाजें सुनाई देती हैं, किसी पॉलिसी के ऊपर भिन्न प्रकार के दृष्टिकोण सामने आते हैं, लेकिन हाँ, सोशल मीडिया पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी उतना ही स्थान मिलना चाहिए कि अगर कोई महिला हो या पुरुष हो किसी विषय को सामने रखते हैं तो एविडेंस बेस्ड उस पर डिबेट हो सकती है, वार्ता हो सकती है, डेलिबरेशन हो सकती है, लेकिन सम्मान की भावना के साथ।
ये बताएं, क्या आपको लगता है कि महिलाएं बेहतर राजनेता होती हैं?
रिसर्च के आधार पर मैं बात कह रही हूँ कि जहां जहां एडमिनिस्ट्रेटिव पोजिशंस पे महिलाओं को जिम्मा दिया गया वहां वहां देखा गया कि शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, जो हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के सारे मापदंड है, उनमें महिलाओं ने प्रशासनिक ज्यादा गति दिखाई, वित्तीय वहां पर ज्यादा आवंटन करवाया। इसलिए जब महिला को जिम्मेदारी मिलती है प्रशासनिक अथवा राजनीतिक, तो उनका रुझान परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ और सक्षम करने का रहता है। लेकिन ये भी कहना जरूरी है कि अगर हम महिला और महिला की काबिलियत पर चर्चा करें तो हमारे लिए बहुत जरूरी है जानना कि महिलाएं चाहती हैं कि हम पुरुषों के साथ सामान्य धरा पर कंपीट करें। हम किसी से खैरात नहीं चाहते, हम बस चाहते हैं कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और रिसोर्सेज के प्रति इक्वल एक्सेस मिले।
राजनीति में आने का विचार रखने वाली दूसरी महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
तो मैं तो जो आज हमारे इस इंटरव्यू को सुन रही हूँ, हर महिला से कहना चाहूंगी कि अगर आपने ठान ली है समाज में परिवर्तन करने की, वो परिवर्तन एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने से हो सकता है, एक कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन के माध्यम से होता है, एक एनजीओ बनाने के माध्यम से हो सकता है, अपने गली, अपने मोहल्ले, अपने गांव, अपने शहर में महिलाओं की वोटर तादाद को बढ़ाकर हो सकता है, अथवा पंचायत से लेकर संसद तक आप मुद्दों के आधार पर राजनीति कर सकती हैं। जैसे कि कहा, पूरा आसमान अभी बाकी है।
केंद्रीय टेक्सटाइल्स मंत्री और महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी से बात कर रही थी यूएन न्यूज हिंदी की अंशु शर्मा। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। सचिन गौड़ को अनुमति दीजिए। नमस्कार।